इत्यादि सागर सुधी, जो इत्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि को निर्मल बनाया है। हमें अब एक ऐसी समझ जिससे कि आत्म कल्याण हो, वो भी प्राप्त हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये जो निरंतर राग द्वेष चलते रहते हैं, उनको भी हम घटा सकें या कि उनसे भी हम ऊपर उठ सकें, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। राग द्वेष कैसे घटें? राग द्वेष घटते हैं हमारे अपने आचरण की निर्बलता से या हमारे अपने परिणामों की निर्बलता से। हमारे मन में वीतरागता के प्रति श्रद्धान हो, हमारे मन में वीतराग भाव बनाए रखने के लिए प्रयत्न हो, तो धीरे धीरे करके ये राग द्वेष भाव घटने लगते हैं। पूर्ण रूप से राग द्वेष से मुक्त होने के लिए सबसे पहले कहा गया कि मुनि धर्म अंगीकार करें, लेकिन अगर कोई पूर्ण रूप से राग द्वेष से मुक्त होने के लिए महाव्रतों को अंगीकार न कर सके, तब उसके लिए आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ जीवन में भी वो अपने आप को राग द्वेष से बचाने के लिए प्रयत्न करे, ऐसा उपदेश दिया है। एक गृहस्थ अपना जीवन गृहस्थी में रहकर के भी जीता है, पर उसके मन में भावना उसी वीतरागता की तरफ जाने की होती है, उन्हीं महाव्रतों के अंगीकार करने की होती है, तो उसका वो जो गृहस्थ जीवन है वो भी उसे संसार से पार लगाने में कारण बन जाता है। एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि गृहस्थी तो जंजाल है, अब उसमें फंस गए हैं तो निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आचार्य भगवंतों की दृष्टि में ऐसा नहीं है। वे इसे भी धीरे धीरे मुक्त होने का ही मार्ग मानते हैं। कोई अगर मुनि ना बन पाए तो ही उससे गृहस्थ जीवन का उपदेश देना, ऐसा भी कहा गया है। सबसे पहले तो मुनि बन करके वीतराग भाव को प्राप्त करने का ही उपदेश है, और यदि उसकी सामर्थ्य ना हो तो फिर गृहस्थ जीवन है वह भी मुनि के पीछे पीछे चलने का ही अभ्यास है। इसलिए महाव्रतों का अनुसरण करने वाले अनुव्रत अनुगमनम, जिनमें कि हम अनुगमन करें महाव्रतों का, ऐसे व्रत जो है वो अनुव्रत कहलाते हैं, और उन अनुव्रतों को धारण करके हम अपने वीतराग भावों को सुरक्षित रख सकते हैं, राग द्वेष से बच सकते हैं। उन गृहस्थ जीवन में अनुव्रतों को कैसे धारण करें, तो अपन ने पिछले दिनों इस पर भी विचार किया है कि हम संकल्प लेकर के बिना किसी प्रयोजन के किसी जीव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हम ऐसा झूठ जिससे कि दूसरे का अहित होता हो ऐसे वचन नहीं बोलेंगे, ऐसे वचन बोलने का कोई विचार भी नहीं करेंगे, किसी और की धन संपत्ति उसे छीनने का, उसे हड़प लेने का, या उसके भूल जाने पर उसे अपनी कह लेने का, ऐसा कोई भी मिथ्या भाव अपने भीतर नहीं लाएंगे, क्योंकि दूसरे ने जो परिश्रम से धन संपत्ति कमाई है उसके छिन जाने पर उसे संक्लेश होता है। हम स्वयं भी बिना किसी परिश्रम के धन संपदा नहीं कमाएंगे, परिश्रम के द्वारा अर्जित धन संपदा ही हमारे आत्म विकास में कारण बनती है, वरना वो जो परिग्रह अपन इकट्ठा कर लेते हैं, धन संपदा इकट्ठी कर लेते हैं जिसमें कोई परिश्रम नहीं किया, वो हमें व्यसनों की तरफ ले जाती है। देखो अपन कहते भी हैं कि आप कमाई के बाप कमाई, ऐसा कहते कि नहीं भैया तुमने कमाई है, तुमने कमाई तो हिसाब से खर्च करोगे, और तुमने नहीं कमाई है तो उसको बर्बाद करोगे व्यसनों में, बुरी आदतों में, क्योंकि उसके पीछे जो परिश्रम है उस परिश्रम का हमें अनुभव ही नहीं है। उस परिश्रम का अनुभव न होने से और हम उस धन संपदा से अपना ही अहित कर लेते हैं, इसलिए बिना परिश्रम के धन संचित ना करें और दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि खराब ना करें। अब इतना ही नहीं, आगे जाकर के कहते हैं कि हमारे पास जो एक कहना चाहिए मन वचन काय और जो पांचों इंद्रियां हैं, उन पांचों इंद्री और मन ऐसा ले लें इन पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अगर पांच इंद्री और मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो बताइए, जिन्होंने पांच इंद्री और मन को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया है, जो जितेंद्री हो गए हैं, ऐसे महाव्रतों को धारण करने वाले और महाव्रतों के माध्यम से अरहंत अवस्था को पाने वाले, उस मार्ग को हम कैसे पा पाएंगे? तो घर गृहस्थी में रहकर के भी कोई व्यक्ति क्या पांच इंद्री और मन को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सकता है? कर सकता है, और यही एक अभ्यास जिसे ब्रह्मचरी अनुव्रत कहते हैं। सामान्य रूप से तो प्रचलित ये है कि ब्याह नहीं करना सो ब्रह्मचरी होगा, नहीं ये बहुत छोटी सी परिभाषा है भैया। अपने यहां तो लिखा हुआ है कि पांच इंद्रिय और मन के विषयों का नियंत्रण करना ये ब्रह्मचर्य है, या कि अपने आत्मा में स्थिर हो जाने का नाम ब्रह्मचर्य। दोनों ही स्थितियां हैं। जो पांच इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त हो जाएगा, उन्हें नियंत्रित कर लेगा, उसे ही अपने आत्मा के वितराग स्वरूप में स्थिर होने के लिए और समय मिलेगा, या उसी की भावना उत्पन्न होगी जो अभी विषय और वासनाओं में उलझा हुआ है, उसके मन में कहां अपने वितराग स्वरूप में स्थिर होने की भावना होगी। तो दो परिभाषाएं बनाई कि अपने ब्रह्म में ही लीन रहना, अर्थात अपने आत्मा के उस परम विशुद्ध स्वरूप में ही लीन रहना, वो ब्रह्मचरी है, वो तो महाव्रती ही कोई बिरला और ऐसा कर सकता है। तो एक गृहस्थ क्या करे? तो कहते अपने पांच इंद्रिय और मन का नियंत्रण करे, और पंचेंद्रिय और मन का नियंत्रण करने के लिए उसके लिए विवाह की पद्धति रखी गई। आश्चर्य लगता है कि आचार्य भगवंत ब्रह्मचरी अनुव्रत के अंतर्गत स्वदार संतोष ऐसा कह रहे हैं। स्वदार संतोष यानी जिससे विवाह किया है उसमें ही संतुष्ट रहना, यह भी तुम्हारा अनुव्रत है, तुम व्रती हो गए। बताइएगा, विवाह करने वाला भी व्रती? अपन तो कहेंगे कि विवाह करने वाला तो सब प्रकार से और संसार बढ़ाने वाला काम कर रहा है। नहीं, अनंत इच्छाएं हो सकती हैं, मन और पांचों इंद्रियों के विषय अनंत फैले हुए हैं, उनको हमने सीमित कर लिया है, इसलिए यह व्रत हो गया। किसी एक पर ही हमारा सारा का सारा, जो कहना चाहिए हमारे मन की इच्छाएं हैं, कामनाएं और वासनाएं हैं, वो एक पर ही नियंत्रित हो गई, बाकी सबके प्रति हमारे मन में और निर्मलता आ गई है, इतना काम विवाह में हो जाता। तब तो विवाह की परिभाषा लिखी है जैन आचार्यों ने, कहते हैं कि जिससे धर्म की परंपरा और कुल की परंपरा बढ़े और अपनी इच्छाओं का भी नियंत्रण हो, ऐसी प्रक्रिया का नाम ही विवाह है। आज अपन ब्रह्मचरी अनुव्रत पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मचरी धर्म पर नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचरी धर्म पर अपन जब 10 लक्षण पर्व मनाएंगे तब बात करेंगे, इसलिए अपन जो ब्रह्मचरी अनुव्रत पर बात कर रहे हैं, स्वदार संतोष नाम का व्रत है, और वो स्वदार संतोष नाम का व्रत कहो या कि विवाह की पद्धति कहो, इस पर हमें विचार करना चाहिए, तभी इस चीज का स्वाद हम ले पाएंगे कि कैसे हम अपने पांच इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करें। इसलिए विवाह एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है, वह कोई इस तरह का अनुष्ठान नहीं है जैसा कि आज वर्तमान में बन गया है। हमें उसको जरा सा एनालाइज कर लेना चाहिए कि वह भी हमारे कल्याण में कारण बन सकता है क्या? बन सकता है, अगर उसकी प्रक्रिया ठीक से की जाएगी तब। धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ, ये तीनों पुरुषार्थ गृहस्थ के जिम्मे हैं। एकमात्र मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले तो महाव्रती साधु हैं। गृहस्थ तो धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ करता है, लेकिन धर्म पूर्वक ही अर्थ पुरुषार्थ करेगा और धर्म पूर्वक ही काम पुरुषार्थ करेगा। वो जो धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ करना है उसी को कहते विवाह, उसी को कहते ब्रह्मचर्य अनुव्रत। बताइए, इस पर जरा सा विचार करें। विवाह सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं की सीमा के लिए, अपने मन और इंद्रियों के विषयों को सीमित करने के लिए और अपने धर्म की परंपरा को और अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए कुल की परंपरा आगे बढ़ेगी संतान उत्पत्ति से, और धर्म की परंपरा पड़ेगी उस संतान को संस्कारवान बनाने से, और अपनी इच्छाएं भी सीमित हो जाएंगी। इतना काम जो है विवाह अकेले करने से होता, इसलिए विवाह करने की प्रक्रिया भी ठीक ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे, मैं तो सोचता हूँ कि जितना मुनि बनने से पहले सोचना पड़ता है कि तत्व तो निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, परिसय उपसर्ग सहने की शक्ति है कि नहीं, संसार शरीर और भोगों से उदासीनता है कि नहीं, इतना सब विचार कर लेना तब महाव्रत अंगीकार करना। ऐसे ही विवाह करने से पहले विचार कर लेना कि अपनी धर्म की परंपरा को आने वाली पीढ़ी को देने का मेरे पास वक्त है कि नहीं, मैं अपने कुल के जो कुलाचार चला आ रहा है उसको आगे बढ़ा पाऊंगा कि नहीं, और अपने मन और इंद्री के विषयों को नियंत्रित कर पाऊंगा कि नहीं। इतना विचार करके ही विवाह करना, ऐसा नहीं कि जल्दी में आठ ही देना, नहीं भाई ते बहुते हो गई सो हमने तो तय कर ली और होगा ब्याह। अब क्या करना है ब्याह के बाद में और ब्याह में क्या करना, कोई समझ ही नहीं। मुनि बनने से पहले सोचना पड़ता है कि मुनि बन रहे हैं तो कैसे चर्या कैसे करेंगे, ऐसे ही ब्याह कर रहे हैं तो जीवन जिएंगे कैसे। जीवन जीने का ढंग, एक अकेले चलना बहुत आसान है, मनमानी करने की पूरी छूट है, चाहे जो करो कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन किसी के साथ चलना बहुत ज्यादा कठिन है। उसका मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा तब चलेगी गाड़ी, और किसी के चरणों में अपना माथा टेक करके अपना मन उसके चरणों में डाल के चलना तो सबसे ज्यादा कठिन। हाँ, एक अकेले चलने में कोई दिक्कत नहीं है चाहे जो करो, लेकिन दो के साथ चलो यानी गृहस्थ जीवन, और किसी के चरणों में अपना माथा टेक करके चलना वो तो और कठिन है। किसी के शिष्यत्व को अंगीकार करके और उसे अपना गुरु मान करके उसके अनुरूप आचरण करना, ये तो खैर बहुत ही कठिन चीज है। पर दूसरे नंबर वाली भी कठिन चीज है कि किसी के साथ जीवन जीना, उसके सुख दुख का, उसके मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चीज जो है उसके लिए भी अपन को और पूरी समझ के साथ इस प्रक्रिया को करनी चाहिए। आठ प्रकार के ब्याह की पद्धति कही गई है, जिसमें से चार वैलिड हैं और चार नहीं है। आज जो है पिछले वाले चार का जोर ज्यादा है, पहले वाले जो चार हैं उनकी तो कोई चर्चा विशेष अब बहुत कम लोगों में रह गई। ब्रह्म विवाह कहलाता जो कि माता पिता की आज्ञा से बिना देखे, जिससे विवाह करना है उसे बिना देखे, सिर्फ माता पिता ने जिसे तय कर दिया उसके अनुसार कर लिया, अरेंज्ड मैरिज, ये कहलाती आज की भाषा में अरेंज्ड मैरिज। लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दो ही तरह की हैं आजकल के समय में। तो ये अरेंज्ड मैरिज है जिसमें माता पिता ने अरेंज किया है, हमने देखा भी नहीं, ये ब्रह्म विवाह की पद्धति है। फिर प्राजपत्य विवाह की पद्धति है, संभ्रांत लोगों के बीच में और हम उस विवाह को संपन्न करते हैं। जो खानदानी है, कुल परंपरा से जिनके यहां पर धर्म चला आ रहा है उनके साथ हम अपना विवाह इत्यादि करते, वो प्राजापत्य नाम की विवाह की पद्धति है। तीसरी आर्ष पद्धति है, जिसमें कि अग्नि की साक्षी में सप्तपदी जिसे कहते हैं, वह आर्ष पद्धति है विवाह की। और चौथी पद्धति है देव पद्धति, जिसमें कि कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करके पहले और राजा महाराजा अपनी कन्याओं को अन्य राजा को दान स्वरूप दे दिया करते थे, वो देव विवाह की पद्धति है। ये चार पद्धतियों में से वर्तमान में श्रेष्ठ पद्धति आर्ष पद्धति मानी गई है, और बाकी आसुरी पद्धति, पैशाचिक, राक्षसी और गंधर्व विवाह की ये चार पद्धतियां अपने यहां पर मान्य नहीं है। आसुरी पद्धति यह है कि जोर जबरदस्ती करके पहले संबंध स्थापित कर लेना ताकि फिर विवाह के लिए मजबूर ही हो जाए, आसुरी प्रवृत्ति है। आज वर्तमान में यह भी धीरे धीरे प्रचलित हो रही है। फिर दूसरी पद्धति है पैशाचिक पद्धति, पिशाच कौन सा, जिसकी चर्चा कल की थी अपन ने, कोई भूत पिशाच वाला पिशाच नहीं, परिग्रह से बड़ा कोई पिशाच नहीं है। उस परिग्रह की लोलुपता, धन संपत्ति की लोलुपता से चाहे जैसा धन मिले मुझे तो वहां अपनी विवाह कर लेना है जहां मुझे धन संपत्ति बहुत मिलेगी। ये सब पैशाचिक धन विवाह की पद्धति है। इससे इस विवाह की पद्धति को अनुव्रत मत मानना, इस विवाह की पद्धति को धार्मिक अनुष्ठान मत मानना, ना ये सामाजिक अनुष्ठान है ना ये धार्मिक। वास्तव में तो जो आर्ष परंपरा से विवाह किया जाता है वही सदार संतोष और वही अनुव्रत कहलाएगा और वही जो है आत्म कल्याण में कारण बनेगा। बाकी ये सब विवाह आत्म कल्याण में कारण नहीं है, ये संसार बढ़ाने वाले। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि मैंने विवाह को परंपरा से निर्वाण का कारण बता दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि आज जो विवाह चल रहे हैं क्या वो भी नहीं, वो कहीं से कहीं नहीं आएंगे, वो सब पैशाचिक पद्धति है और राक्षसी पद्धति है कि सोते हुए को उठा करके और अपहरण करके ले जाना। वो अपहरण अलग है जैसा कि श्री कृष्ण ने करवाया था और रुक्मणी का, उसमें तो युद्ध करके और मैं ले जा रहा हूं सबके सामने, वो नहीं है। यहां तो सोते हुए और उसको उठा करके अपहरित करके ले जाना वो कहलाएगी राक्षसी विवाह की पद्धति। और ये जो पहले से डेटिंग करके और कहीं एकांत में मिल लेना और तय कर लेना कि अपन विवाह करेंगे, ये कहलाती गंधर्व विवाह, लव मैरिज, जिसको आज जो धीरे धीरे बहुत अधिक प्रचलित हो गई है। वो उसमें अपनी भी कमी है, अपन लोगों का प्यार नहीं मिलता बच्चों को घर में, तो कहीं बाहर किसी और को बहुत प्यार मिलता है तो फिर वो उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाने लगता। इसमें भी परिवार की ही कमी मानी जाएगी, उन बेटे बेटी की तो कमी अपनी जगह है, वो है जो इस तरह से बहुत जल्दी एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, होते ही हैं, क्योंकि जिन्हें घर में और बिल्कुल केयर नहीं होती है उनको अगर बाहर कोई केयर करने वाला मिल जाए तो बहुत जल्दी वो उसमें आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण तो उस टाइनी एज में तो आकर्षण रहती ही, 12 से 18 की टाइनी एज है, बहुत खतरनाक उपद्रव वाली उम्र है वो, जिसमें कि नाना प्रकार की क्यूरोसिटी, बहुत प्रकार की जानने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि ये जानू ये कैसा है ये कैसा है। और इन दिनों में चाहिए बहुत अधिक प्रेम, तो वो प्रेम अगर माता पिता से मिलता है, उनके पास समय है घंटों उनसे बात करने का मित्र की तरह, तो नहीं होगा, वरना ये हो रहा है धीरे धीरे, ये गंधर्व विवाह की पद्धति जो है वो प्रचलित हो रही। इनमें से अपने को ध्यान रखना कि आर्ष पद्धति से ही विवाह करना। आर्ष पद्धति में परिग्रह के परिमाण का ध्यान रखा जाएगा और भोगोपभोग की सीमा रखी जाएगी। ये दोनों चीजें आर्ष पद्धति में अनिवार्य हैं। परिग्रह का परिमाण करके ही विवाह करना, इतना ही गृहस्थी में दहेज इत्यादि एक सीमित मात्रा में ही लूंगा, दूसरा दे भी रहा होगा बहुत अधिक मात्रा में, पर मेरा तो परिग्रह का परिमाण और भोगोपभोग का परिमाण यह है कि विवाह में कितना खर्च करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा भोगोपभोग में कि इतने आइटम बनना चाहिए, उनके यहां तो इतने बने थे और इतने प्रकार से और आनी चाहिए ये चीजें, ये सब भोगोपभोग का परिमाण, तब कहलाएगी ये धार्मिक पद्धति है भी वास्तव में धार्मिक अनुष्ठान। और गीत बजे तो कौन से बले जिनसे संस्कृति का पोषण हो, ये जो फूहड़ गीत बजते हैं वो नहीं है धार्मिक अनुष्ठान, उसमें तो ऐसे बचेंगे जो संस्कृति को और हमारे मन को प्रसन्न चित्त करने वाले हों और हमारे लिए वैराग उत्पन्न करने। उस अवसर पर भी वैराग बना हुआ है, क्यों, मैं मुनि नहीं बन पाया, मैं महाव्रत नहीं ले पाया, मेरी अपनी कमजोरी की वजह से अब मुझे यह विवाह करना है, यह एक पद्धति मुझे दूसरे नंबर की, जैसे किसी को और मने ऊंची चीज ने लेवे की क्षमता होवे सो उसे नीची जो है दई जावे तो कैसा सोचता के लेने तो बाहती मनोबजा मिली है चलो कोई बात नहीं। हाँ ऐसा सोच करके कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 प्रदक्षिणा लगाता हूं इस बात के लिए कि मैं भगवान के बताए हुए 7 तत्वों पर श्रद्धान रखूंगा। सप्तपदी के मायने था कि भगवान के 7 बताए हुए तत्वों पर ही उनका ही अभ्यास करूंगा, जीवन भर उनका ही श्रद्धान रखूंगा और मेरे से जितना बनेगा ये 7 तत्वों का अभ्यास अपने आने वाले संतान को भी दे करके जाऊंगा, ये श्रद्धान उसे भी हैंडओवर करके जाऊंगा कि वास्तव में तो 7 तत्वों का श्रद्धान जो प्रयोजन भूत 7 तत्व है जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं वो ही संसार से पार करने वाले हैं, ऐसा वहां पर अनुष्ठान है वो धार्मिक अनुष्ठान इस तरह हो जाता है, तब ये विवाह जो है वो भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला हो जाता है, वो भी अणुव्रत की तरह, और पीठ थपथपाने लायक हो गया कि आप अणुव्रती हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है। आज तो वर्तमान की जो विवाह की प्रक्रिया है वो कैसी कैसी हो गई, सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता है। एक बेटा अपने और बहन के ब्याह के कुछ स्नैप्स मुझे दिखा रहा था कि ये दीदी का इस तरह से ब्याह, उसमें एक जो है नाच गान वाला भी उसने जल्दी से पलट दिया। तो मैंने कहा ये अच्छा, ये होता तो था, मुझे भी याद है घर के भीतर जब बहू आती है तो सब लोग बहुत उत्साहित होकर के और उसको गोद में उठा करके और फिरते हैं पूरे घर भर में कि हमारे लक्ष्मी आई। हाँ ऐसा, मतलब बहुत उत्साह होता था कि हमारे घर में जो है बहुत बड़ी चीज आ गई, अब ये इसी के जिम्मे है सारी घर गृहस्थी, बनाए तो मिटाए तो जो कछु करे, क्योंकि परंपरा पूरी इसी से बनेगी। ज्येष्ठ है अगर तो और ज्यादा सम्मान होता था कि ज्येष्ठ इसी को सारा का सारा, माँ के बाद अब दायित्व इसी का है सबका। ऐसा सोच करके वो कह लाए नहीं जी, वहां घर के भीतर का नहीं है ये उत्सव, ये उत्सव तो रास्ते में होता है, ये तो महिला संगीत के नाम पर मंच पर होता है, जहां अपने ही घर के लोग और बाहर के लोग बैठे रहते हो, महिला संगीत के नाम पर फूहड़ गीत गाए जाते हैं और अपनी बहू बेटी को और नचवा दिया जाता है। ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, अब आपको बुरा लगे तो मान तो जाओ एक बार बुराई, सुधर तो जाए कछु हो जाए काम, बुराई नहीं लग रही आपको, बुराई नहीं मान रहे आप, लग जाना चाहिए कि हाँ सचमुच क्या कर रहे हैं हम, और अपने जबकि क्या हमारी मैंने परंपरा रही है, क्या हमारे संस्कृति रही है, क्या हमारा अपना एक स्टेटस रहा है, जीवन मूल रहे हैं कि नहीं, ऐसे फूहड़ कामों में हम अपने घर के लोगों को शामिल करेंगे क्या, नाच गान में रास्ते के चौराहे पर जो है इस तरह से, आज ये भी देखने में आने लगा। ये विवाह जो है वो धार्मिक अनुष्ठान ये नहीं कहलाएगा, ये तो विवाह का विवत्सीकरण है, विवाह को घृणास्पद बना दिया है, इससे हमें बचना चाहिए। सबसे कह रहा हूं सबके जीवन में ये अवसर आता है, बाकी आप पूजा पाठ सबकी चर्चा करूंगा मैं आपसे, अभी आने वाले हैं ब्रह्म खूब कर लियो वे सब, 10 दिन के उपवास कर लो, सब कर लो आप, लेकिन ये पद्धति ठीक नहीं होगी तो वे 10 दिन के उपवास ज्यादा आपके आत्म कल्याण में कारण नहीं बन पाएंगे, ये भी कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये वर्तमान में जिस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है उससे हमारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान है वो नष्ट होता चला जा रहा है। सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान की हमने क्या विकृति बना दी है, और खर्चे के बारे में तो सब जानते हैं कि अनाप शनाप किस तरह से जो है, और हम अपना दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। भैया नृत्य करने का निषेध नहीं है, अच्छे गीत गाने का उस अवसर पर मंगल गान करने का निषेध नहीं है, उस समय मेकअप करने का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों से जो कि दूसरे जीव राशि की हिंसा से बनी हो उन चीजों से तो नहीं लिखा। सजाने की प्रक्रिया भी हो, सब कुछ है उस विवाह के अनुष्ठान में, लेकिन उसका जो रूप आज वर्तमान में है वो बहुत दुखदाई हो गया है। अपन दिन में भी विवाह करने लगे हैं पर उसके पीछे भी और क्या स्थिति हो गई, पहले लोग रात्रि में करते थे पर फिर भी शालीनता से करते थे, धीरे धीरे करके रात्रि के विवाह में फूहड़पना आने लगा, तो अपन ने सोचा कि दिन में कर लेंगे, बहुत अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन दिन में भी बेईमानी करने का ढंग निकाल लिया, ये ठीक नहीं है। दिन में बेईमानी करने का ढंग हमने वहां गंज बासौदा में देखा था, वहीं रुके थे और वहीं पर कहले सब दिन में ब्याह होंगे, हमने कहा ठीक बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न हुए हम, लेकिन दिन के ब्याह की क्या दुर्गति करी है, रात 10 बजे से भोजन बनना शुरू होता है, सब चीजें आइटम बनना शुरू, सुबह के 4 बजे तक बनते रहे और 4 बजे बना था पोहा जो कि सुबह के नाश्ते में बन दिया जाएगा, बाकी 10 बजे 11 बजे जो भोजन दिया जाएगा वो सब तो 10 बजे रात से 4 बजे सुबह तक बन चुका था। अपार जीव राशि थी उन दिनों और वो सब ये काले वाले कीड़े थे, सब कुछ होते हुए भी उस पूरे समय में और सारी रात वो भोजन बना और आपने दिन में खाया, लेकिन हिंसा तो आपने जिस अनुष्ठान में हमें अहिंसाणु व्रत ग्रहण करना था उसमें हमने हिंसा करके और अपना वह विवाह संपन्न किया, उसमें हमने भोगोपभोग की लालसा रखी तो क्या भोगोपभोग का परिमाण करेंगे, उसमें हमने अपने धन पैसे का दिखावा किया तो क्या परिग्रह परिमाण व्रत करेंगे हम, कौन से हमने उसमें अपनी परंपरा का निर्वाह किया, और इतने ही नहीं उसके बाद में हमने देखा कि दिन में वो पेंडाल बनाया गया था, इसमें तो सफेद लगाया है उनने उसमें, और डार्क नेवी ब्लू कलर का लगाया था। हाँ, उसका उद्देश्य क्या था? ताकि नीचे हल्की रोशनी हो जाए। बहुत मोटा और नेवी ब्लू कलर का लगा दिया, और उसमें फिर लगाए थे जुगनू जुगनू वाले बल्ब। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो आकाश है और रात हो गई है और उसमें बिजली जल गई है, और पूरा डार्क कर दिया गया था अंदर। दिन की 12 बजे की रोशनी में उस पंडाल के भीतर लगता था कि रात 8 बज गए, और फिर हल्का हल्का सा वही संगीत जो 5 स्टार होटल में चलता है, और फिर उसके बाद जो है सारा अनुष्ठान हो रहा, उसी में खाना पीना हो रहा है, और उसी में सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक समझते, शराब, अंग्रेजी शब्द है सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन वो सीधी सीधी वाइन है, और कोई कोई किसी को किसी की लाज शर्म नहीं। ये हमारे देखते देखते वह प्रक्रिया मंदिर के परिसर के भीतर से, आप सोच सकते हैं दिन में किया है, सोचो आप, लेकिन दिन में क्या किया आपने? जिस चीज का निषेध करने के लिए हमने दिन का विवाह करना सोचा था, वो जो रात में आप इस तरह कर लेते थे कि तांस पत्ती खेल रहे, शराब पी रहे हो और फूहड़ नाच गाने कर रहे, उससे बचाने के लिए हमने दिन में रखा था, आपने दिन में भी वही सब कर लिया जो आप, यानी अपनी मानसिकता नहीं बदली, वही के वही रहे, परिणाम अपने वही खोटे रहे। भैया कितने तो उदाहरण है अपने जीवन में हमारे आदर्श पुरुषों के, एकाध तो याद आना चाहिए। रामचंद्र जी का उदाहरण आदर्श है, लक्ष्मण जी का उदाहरण आदर्श है। उन्होंने जब सीता जी का हरण हो गया था तब क्या पहचाना था बताइए? मैं तो सिर्फ नूपुर पहचानता हूं भाभी के, मैंने तो उनका मुख भी ठीक से अवलोकन नहीं किया राग की दृष्टि से, मैंने तो सिर्फ रागान्वित होकर के उनके चरण ही देखे हैं, इसलिए उनने हाथ में क्या पहन रखा और गले में क्या पहन रखा और माथे पर बेंदी कौन सी लगाई थी मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नूपुर रोज क्योंकि मैं उनके चरण छूता हूं। ये विवाह की पद्धति है जहां की हम इतनी निर्मलता रखते हैं, और वही राजा रामचंद्र जी जिन्होंने की सीता जी के हरण हो जाने पर, और कितने विचलित हुए थे, कितने दुखी हो गए थे, पर दुखी होने के बाद भी अपना दायित्व तो समझ करके, क्योंकि पाणी ग्रहण के मायने हैं मैं तुम्हारा हाथ थामता हूं, यानी जिंदगी भर साथ दूंगा, विपत्ति में भी साथ दूंगा। ये परस्पर हाथ थामने का मतलब है एक जिम्मेदारी लेना एक दूसरे के आत्म कल्याण की, एक दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त बनेंगे। एक अकेले नहीं कर पा रहे थे आत्म कल्याण, कमजोर पड़ गए थे, इसलिए दो लोग एक साथ मिलकर आत्म कल्याण करने के लिए उत्सुक हुए हैं, एक दूसरे को संभालते रहेंगे। हम विषय वासनाओं में गिरने लगे तो तुम संभाल लेना, तुम्हें गिरते हुए मैं संभाल लूंगा, इसके लिए था पाणी ग्रहण, ये उसका शब्द दिया हुआ था, इस अपेक्षा से वो शब्द बनाया गया था। दाम्पत्य एक साथ जो है, और हम इंद्रियों के दमन करने के लिए एक साथ जीवन जिएंगे, दाम्पत्य। बताइए आप इन शब्दों के कितने गंभीर और कितने सशक्त अर्थ थे जो हमारे साथ हमें रखे गए थे, लेकिन आज वो सारी चीजें जो है, और हमने धीरे धीरे, हमारी अपनी कमी मानी जाएगी भैया, और वे ही राजा रामचंद्र जी जो अपनी जिम्मेदारी समझ करके और सीता जी को, आप कभी पढ़ें, 11 दिन हो गए थे जब तक कि श्री राम की खबर नहीं मिली थी, अन्न जल का त्याग कर दिया था अशोक वाटिका में, 11वें दिन जाकर के जब हनुमान जी पहुंचे थे रामचंद्र जी की खबर लेकर के, तब कंफर्म कर लिया था। क्या पूछा था उनने कि तुम कौन से रामचंद्र जी के भक्त हो? तो ना में राघवो मांसम मध्यम च भुंगते, मैं उन रामचंद्र जी का भक्त हूं जो कि मद मधु मांस नहीं खाते हैं। अच्छा, तब तो ठीक है, क्योंकि राक्षस जो रावण है, राक्षस वंश का रावण, वो उसके तो जितने भी हैं उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, वे मद मधु मांस का सेवन भी करते हैं, वे तो राम का वेश बनाकर मुझे कई बार ठगने आए हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि कौन से वाले रामचंद्र जी के तुम भक्त हो। तो जो मद मधु मांस नहीं खाते, मैं उन रामचंद्र जी का संदेश लेके आया हूं। तब जाकर के और सीता जी ने अन्न जल ग्रहण किया था, ये कहलाता पानी ग्रहण। बताइए, अपने प्राण दे देंगे लेकिन जब तक एक दूसरे के सुरक्षा का समाचार नहीं मिले, किया है उसी में संतुष्ट हैं और अपने कल्याण करने में लगे हुए हैं, दोनों आत्म कल्याण में लगे। और देखो, जब वहां से छुड़ा करके ले आए तब जरा सी बात सुन करके और तीर्थ यात्रा के निमित्त से सीता जी को भेज दिया कि जाओ तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। मन में भाव क्या था कि हमसे थोड़ी दूर तो हो जाओ, हम दोनों के एक साथ रहने से बाकी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं राजा हूं, तुम्हारा निर्वाह तो करूंगा, यह मेरा काम है, लेकिन एक दायित्व और मेरा है, मैं राजा भी हूं, इसलिए प्रजा जिसमें संतुष्ट हो वो काम करना है। राजा के लिए पहले वो दायित्व है, फिर परिवार है। सो परिवार का दायित्व तो मेरा है, तुम्हारी संभाल करूंगा, लेकिन अभी इस समय तो पूरी प्रजा की संभाल मुझे करनी, इसलिए छल पूर्वक। महापुरुष हैं इसलिए ऐसा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने छल किया, वे तो उनकी बेई जाने मोक्षगामी जीव हैं, लेकिन अपनी भाषा में उसको क्या लगता कि देखो ऐसा क्यों किया कि ये कह करके भेजा के जाओ तीर्थ यात्रा कर आओ, और कृतांत वग्र को कह करके भेज दिया था कि इनको जंगल में छोड़ करके आ जाना। तो क्या चिंता नहीं हुई होगी मन में? जीवन भर के लिए जो संभालने का भाव था, विश्वास था पूरा कि कहीं कोई दोष युक्त नहीं है, यह सब चीजें होते हुए भी उन्होंने अपने उस धर्म का निर्वाह किया जिस पद पर वो थे रामचंद्र। इसलिए आदर्श माने जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को पांच इंद्रिय और मन की मर्यादाओं को जिन्होंने समझा है, और अपन अपने लिए आदर्श होते हुए भी अनुसरण नहीं कर पाते हैं। चर्चा तो जरूर कर लेते हैं अपन की महापुरुष हैं, मोक्षगामी हैं रामचंद्र जी, और तपस्या करी उन्होंने, ये सब चीजें और उनका जीवन, गृहस्थ जीवन आदर्श जीवन था, पर अपने जीवन को क्या हम उसमें से 1% भी नहीं बना सकते? वो 100% थे तो अपन 1% तो उसका अनुसरण कर ही सकते हैं, जरा सा तो ध्यान इस तरह का कर सकते हैं। और फिर जाकर के जो है उन्हें विश्वास था कि उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और कृतांत वक्र को लौटते समय सीता जी ने क्या कहा था कि मुझे सहसा विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, कोई ना कोई बात तो होगी। ये शब्द हैं उसमें उनके कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा सहसा कि मुझे ऐसा छोड़ने के लिए कह देंगे, कहीं ना कहीं कोई उनकी मुश्किल होगी, पर इतना अवश्य कह देना कि वो धर्म से विचलित ना हो। कोई बात नहीं, हमारे कर्म का उदय था। वो वर्णन पढ़िएगा आप तो बेहल हो जाएंगे उस वर्णन को पढ़ते हुए, जब वो कहती, और फिर उसके बाद वो भी महापुरुष हैं, 2-3 भाव में उनको भी मुक्ति हो जाएगी, सीता जी को भी, मोक्षगामी जीव हैं ये सब, लेकिन मन में उनके भी जरा क्षण भर को वेहलता आई, मूर्छित हो गई थी। और उसके बाद जो भी हुआ, लव और कुश उत्पन्न हुए, लवांकुश लवणांकुश जिनका नाम था। हाँ, तो फिर उसके बाद की सबको वो घटना प्रसिद्ध है, पता है, पर मैं तो फिर लास्ट में पहुंच जाता हूं कि जब सब कुछ हो गया, जब सब मिल गए, तब कहा था कि चलो अब फिर से अपन अपने उस आदर्श गृहस्थ जीवन को फिर से जीते हैं। तब क्या जवाब दिया था कि बस एक दूसरे के कल्याण के लिए, और हमने संतान की उत्पत्ति के लिए ब्याह किया था, सो अब एक दूसरे के कल्याण में निमित्त बने, संतान तो संस्कारवान हो ही गई है, दोनों पुत्र हैं, दोनों को संस्कारवान मैंने बना ही दिया है, और अब इनको संभालो, और मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए पृथ्वीमती माता जी के चरणों में और दीक्षा ग्रहण करती हूं। तब उन्हीं रामचंद्र जी ने, और जब दीक्षा ले ली, आरिका बन गई सीता जी, तब उनको गदगद होकर के नमोस्तु भी कहा, और कहा कि आपने तो शीघ्रता करी और अपने आत्म कल्याण के लिए आप निकल गई, ऐसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सो तो ऐसा ही उच्चारण जीवन भर हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी जीवन साथी के लिए किया। मैंने पढ़ा उनकी जीवन उसमें आत्मकथा में, वे ऐसा कहती हैं, ऐसा शब्द का उच्चारण है वहां पर, बहुवचन में सम्मान सूचक शब्द से उच्चारण किया है परस्पर एक दूसरे को, आप ऐसा कर लीजिएगा, वे ऐसा कहती हैं, वे मेरी जीवन साथी हैं।
वो मेरी जीवन साथी है,
ऐसा नहीं, वे मेरी जीवन साथी है। ऐसा उच्चारण, इससे मालूम पड़ता है कि आपके अंदर परिणामों में कितनी निर्मलता और पवित्रता है, कितनी ऊंचाई है, आप कितनी ऊंचाई से कितने सम्मान से देख रहे हैं,
कैसी आपकी चेतना है, इससे मालूम पड़ता है कितनी निर्मल चेतना हो गई है। तो फिर बाद में उनको प्रणाम करके वापस लौट आते हैं और थोड़े ही समय के बाद जो है, और फिर विरक्त होकर के रामचंद्र जी स्वयं और तपस्या में लीन हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। सबको मालूम है एक आदर्श गृहस्थ का जीवन जीते हुए और उन्होंने किस तरह से परस्पर एक दूसरे के कल्याण में भी निमित्त बने और एक दूसरे का कल्याण किया। भैया यही विवाह की पद्धति है, यही स्वदार संतोष नाम का व्रत है, इसे ही ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहते हैं। हम ब्रह्मचर्य अनुव्रत की बहुत प्रकार से आपने व्याख्याएं सुनी होंगी, ये नहीं खाना वो नहीं करना ये सब कुछ है, लेकिन ये सब कैसे है, अपनी आंख संभली रहवे और कछु नोई है, सब संभल गओ, इतने ही संभल जावे तो सब संभल गया। देवी आम्रपाली नगर वधू थी वैशाली की, नगर वधू का मतलब आप सब समझते हो, मतलब कोई एक की नहीं है सबकी है, मैं जो चाहे उनके साथ संबंध बनावे, हाँ ऐसा समझ लो आप अपनी भाषा में। हम वो शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, अभी जिसकी कहानी भी सुन चुके अपन, अच्छा ही नहीं लगता उस शब्द का उच्चारण करना, पुराना शब्द है नगर वधू थी वो। तो वो विरक्त हो गई और विरक्त हो गई तो बौद्ध गौतम बुद्ध थे उनके आश्रम में पहुंची दीक्षा लेने के लिए, भिक्षु बनने के लिए। तो आश्रम में खलबली मच गई थी भिक्षुओं में कि देवी आम्रपाली आ रही हैं। अत्यंत सुंदर थी रूप रंग में, अब घोषणा हो गई, आनंद से कहा गया कि जाओ सब भिक्षुओं को कहना कि आंख नीची करके बैठे। अब आंख नीची करने का मतलब जो यह है कि जी ऐसी कर लो, उनके कहने का आशय था कि आंख नीची हो जाए मतलब आंख में विकार नहीं आवे, जहर था तो स्वप्न की आंख नीची कर लो, सो आंख नीची कर ली बस, और कहा आंख नीची करने का मतलब सीधा सीधा ले लिया उनने कि जी दो आंखें हैं, अरे भीतर की खुली रहे तो सब मिट जावे हैं, भीतर की जो खोटी आंख है वो तो खुली है जी, ऊपर की दोई में हम के पट्टी बांध लो तो का तो इंद्री विजय थोड़ी हो गई, कान में ठेंटा लगा लो तो कर्ण इंद्री विजय हो गई, नहीं इससे होता क्या, करण पांच इंद्रिय और मन का विजय इससे होता नहीं, परिणाम निर्मल हो गए तो सब निर्मल हो जाते। अब देखिएगा जब आंख नीची कर ली तो लोगों के भिक्षुओं के मन में आया कि इतना सुंदर रूप सुनते हैं और आश्रम में आ रही तो एक बार देखने की परमिशन तो मिले, तो आग भेजा हाँ कि क्या मुझे अगर किसी को आंख नीची करने के बाद भी दिख जाए तो, हाँ ऐसा मन में आ गया कि दिख जाए अगर तो समझ गए गौतम बुद्ध कि देखने की भावना तो सबके भीतर होगी। मैंने ये थोड़ी कहा था, मेरा आशय नहीं समझे कि आंख नीची कर लेना मतलब देखने ही नहीं। आखिरी में जब बहुत सारी बातें हो गईं, उन सबको छोड़ता हूं, आखिरी में बुद्ध ने एक ही संदेश कहलवाया कि जाओ सब भिक्षुओं से कहना कि देवी आम्रपाली आने वाली हैं, जी भर करके उनके रूप और सौंदर्य को देख लेना लेकिन अपने परिणाम संभाले रहना, इतना ही। हम रूप का दर्शन करें लेकिन हमारे मन में उस विकार की उत्पत्ति ना हो, ये हमारा अपना उपादान की सामर्थ्य है। निमित्त तो बहुत हैं लेकिन हमारे उपादान में हम योग्यता जागृत करें ताकि ये बाहर के जो पांच इंद्रिय और मन के विषय हैं वे हमें भ्रमित ना कर सकें। इसके लिए है ये व्रत, घर गृहस्थी में रहकर पांच इंद्रिय और मन के विषयों के बीच रह करके भी और उन सबको नियंत्रित कर सकें, यही ब्रह्मचर्य अनुव्रत है भैया। और इसी के माध्यम से और हम चाहें तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते, घर गृहस्थी में रह करके भी वीतरागता का पाठ सीखा जा सकता है, ये कह रहा हूं। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं तो सोचता हूं कि मुनि बनने से भी ज्यादा अगर कोई इस तरह इस पद्धति से विवाह इत्यादि करे तो उसको भी इतनी ही और जिम्मेदारी का काम है कि वीतराग भाव बना रहे, संसार से मुझे विरक्त होकर के अपने घर गृहस्थी के दायित्व को पूरा करके और फिर अपने आत्म कल्याण के लिए निकलना है। गवर्नमेंट 60 इयर्स में रिटायरमेंट दे देती 58 में, और हम तो पूरी जिंदगी रिटायर्ड नहीं हो पाते घर गृहस्थी के कामों से। एक निश्चित तो कर लेना चाहिए कि 58 में गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती, हम भी अपने बच्चों से कह देने के कि बस अब प्रणाम, जा तुम संभालो चाबी दुकान की और जा घर की तुम संभालो, हम तो महाराज के पास रहेंगे, कभी कभी आते रहेंगे पेइंग गेस्ट की तरह, हम आपसे भोजन कर लेंगे, जब आएंगे तो आपके यहाँ भोजन करेंगे, पैसे चुका करके भोजन करेंगे, अब बस 4 महीने वहां रहेंगे क्षेत्र पे महीने भर महाराज के पास रहेंगे, तीर्थ वंदना करेंगे, साल भर में 2-4 महीने घर में आएंगे, सो तुम्हारे साथ में हम नौकरानी की तरह नहीं रहेंगे कि हमारे बच्चे पालो, अब बच्चों के बच्चे पालने की जिम्मेदारी नहीं, अपने तो खूब पाले वो संस्कार बन बना के छोड़ दिए। हाँ, ये है वास्तव में, अगर हम चाहें तो विवाह के बाद अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को अपनाएं, जितना बने उतना करने का प्रयास करें भैया। इसी